आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैभवी है और आज हम सब आपकी इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम पढ़ेंगे। प्राणायाम बोलते हैं हम एक एक्सरसाइज को, ठीक है। योगा आपने सुना होगा, योगा, योगा में प्राणायाम होता है। अब प्राणायाम आप किसी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में हम एक्सरसाइजेस को डिफरेंट डिफरेंट पीटीज बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग। सिमिलरली योगा में जो हम अपनी बॉडी के साथ जो योगा करते हैं ना, योगा एक पूरे टर्म को कहा जाता है। और योगा में हम क्या करते हैं, योगा में हम करते हैं प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम। तो हमें इस चैप्टर में सीखना है कि प्राणायाम कैसे करते हैं, प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं, प्राणायाम क्या क्या हमारी बॉडी के लिए कर सकता है और कितने टाइप्स के प्राणायाम होते हैं। पहले 4 प्राणायाम तो आपको आपके चैप्टर के पहले पेज पे ही दिख गए होंगे, 4 प्राणायाम है। तो पहला जो प्राणायाम है, इस प्राणायाम को बोलते हैं चक्रासन। इसमें जो लड़का है वो उल्टा होके खड़ा है, दिख रहा है आपको कि उसने अपना पूरा शरीर ऐसे गोल, आधे गोल चक्कर की तरह बना रखा है। इस प्राणायाम को बोलते हैं चक्रासन। दूसरा प्राणायाम है, जो लड़का है वो सर के बल खड़ा है, ठीक है, सर को एक थिर रख के वो खड़ा है। इस वाले आसन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले आसन को बोलते हैं उद्राय सर्वगासन, ठीक है। तीसरा जो आसन है, जिसमें जो लड़का है उसने अपने हाथ आगे कर रखे और अपना जो पैर है वो पीछे कर रखे हैं, एक तरीके से एस जैसा बन रहा है, एस जैसा बन रहा है ये, ठीक है, एक तरीके से जिगजैग वाली शेप आ रही है, जिगजैग आप समझते हैं, जेड जैसी शेप आ रही है। इस वाले आसन को क्या बोलते हैं, अब इस वाले आसन को हम बोलते हैं करनी पिरासन, ठीक है, करनी पिरासन। और आखिरी जो है, जिसमें जो लड़का है वो ऊपर को देख रहा है और अपने हाथों के बल खड़ा है, इस आसन को बोलते हैं भुजरासन, भुजरासन, ठीक है, बाजुओं पे बल देना। कैन यू नेम दिस योगासन, मैंने आपको अभी नाम बताया, यही इनके नाम होते हैं, चक्रासन, फिर हम मैंने आपको बताया उद्राय सर्वगासन, देन करनी पिरासन, फिर एंड में भुजरासन। Which of these do you perform in the prayer assembly? आप अपनी सुबह की prayer assembly में, जो आपकी assembly होती है, उसमें क्या क्या योगा perform करते हैं, क्या क्या योगा आप इनमें से करते हैं, ये आपको बताना है। और तीसरा question है, What change have you felt in your body after performing yoga asanas? योगा करने के बाद आपको अपनी बॉडी में कैसा फील होता है? योगा करने के बाद अक्सर लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद अक्सर हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, हम एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, मोटिवेशनल हो जाते हैं, इसलिए योगा हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। तो अब हम चैप्टर में देखेंगे योगा और उसके बेनिफिट्स। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। प्राणायाम देखिए, योगा क्या होता है, योगा सारे प्राणायाम्स की एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, हर प्राणायाम को योगा बोल सकते हैं, ठीक है। प्राणायाम आप बेसिकली समझ लीजिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस, योगा उन पूरी एक्सरसाइजेस को कहते हैं, ठीक है, शांत एक्सरसाइजेस जिसमें आपको ऐसे हांफना नहीं पड़ता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, इन एक्सरसाइजेस को हम योगा कहते हैं और योगा में हम प्राणायाम करते हैं। अब हम चैप्टर में देखेंगे प्राणायाम क्या होता है और उसके फायदे क्या हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। वन डे दे गॉट अप अर्ली, इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, ठीक है। शिवम और नितिन क्लास 5th के बच्चे होते हैं, एक दिन वो सुबह जल्दी उठते हैं, गॉट अप अर्ली, अर्ली मतलब होता है जल्दी, सुबह जल्दी, और गॉट अप मतलब उठना, गॉट अप अर्ली मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, जो सुबह होती है वो बहुत सुंदर होती है, प्लेजेंट मतलब होता है सुंदर, ठीक है, सुंदर, सुंदर और खुशहाल। जब हमें कोई ऐसा वर्ड जिसमें हमें सुंदर और खुशी वाला फेज यूज करना होता है तो हम प्लेजेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। इट वॉज ए प्लेजेंट मॉर्निंग, यानी कि सुबह बहुत ही खुली खुली, खुश मिजाज और सुंदर होती है। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, They saw many people in the park. Some of them were running on the track around the park. तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि हम पार्क जाएंगे सुबह मॉर्निंग वॉक करने, सुबह की सैर करने. वॉक मतलब क्या होता है? घूमना, चलना. तो वो सुबह जल्दी उठ के पार्क जाते हैं. दे वेंट टू अ पार्क. ठीक है, वेंट मतलब जाना. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह की सैर. दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क. वो पार्क में देखते हैं बहुत सारे लोग. पीपल यानी के बहुत सारे लोग. सॉ यानी कि देखना. ठीक है, वो देखते हैं पार्क में बहुत सारे लोग. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. उनमें से कुछ लोग पार्क के आजू बाजू चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं. रनिंग मतलब होता है भागना. ठीक है, रनिंग मतलब होता है भागना. उनमें से कुछ लोग पार्क के ट्रैक पे, ट्रैक यानी कि जहां पे लोग चलते हैं. ठीक है, ट्रैक मतलब होता है चलने वाली जगह. उस पार्क में कुछ लोग भाग भी रहे होते हैं. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं. इन द मिडल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. तो तभी बीच में पार्क के जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कुछ लोग, सम पीपल, बैठे हुए हैं. वर सिटिंग, कुछ लोग डिफरेंट पोजेज में बैठे हुए थे. पोजेज मतलब क्या होता है? पोजेज मतलब होता है एक पोजीशन. ठीक है, एक एक तरीके से बैठे हुए, किसी अजीब तरीके से बैठे हुए. ठीक है, ठीक है, पोज देना, किसी तरीके से बैठना, कोई पोजीशन में आप चले जाते हैं जब, उसको पोज कहना कहते हैं. तो वो देखते हैं कि कुछ लोग पोज करके हुए बैठे हैं. और शिवम सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब होती है इच्छा, मन की इच्छा, जो आपको कुछ जानने की इच्छा होती है. ठीक है, जानने की जब हमें इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी इंग्लिश में. जानने की इच्छा की वजह से वो लोग, दोनों दोस्त, उन लोगों के पास जाते हैं जो डिफरेंट पोजेज में बैठे हुए होते हैं. देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स. He said, my dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class. तभी वहां एक योगा टीचर बैठा हुआ होता है और वो इंस्ट्रक्शंस यानी कि बता रहा होता है. इंस्ट्रक्शन मतलब होता है बताना, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, my dear friends, आज हम प्राणायाम सीखेंगे योगा की क्लास में. ठीक है, प्राणायाम. तभी कोई पूछता है कि somebody asked, what is प्राणायाम. कोई पूछता है प्राणायाम क्या होता है, तो जो योगा टीचर है वो आपको बताएगा प्राणायाम क्या होता है. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ. यानी कि प्राणायाम जो होता है वो आपकी ब्रेथ से रिलेटेड है. आपकी सांस लेने वाली जो जो आपका एक्शन होता है ना, सांस लेने वाला, जैसे आप सांस पहले लेते हो फिर छोड़ते हो, सांस लेना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग साइंस में आपने पढ़ा होगा, ब्रीथ करते हैं. जो प्राणायाम की एक्सरसाइज होती है वो ब्रीथिंग से रिलेटेड होती है. ठीक है, आगे देखते हैं. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, reduces blood pressure and relaxes body and mind. Pranayam increases our life expectancy. ठीक है, अब हम देखते हैं कि योगा टीचर क्या कहते हैं. तो प्राणायाम, मैंने जैसे कि कहा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, सांस लेने वाली एक्सरसाइज होती है. और जब हम सांस लेने वाली एक्सरसाइजेस करते हैं ना, हमें अपनी सांसें लंबी करनी आती है. ठीक है, सांस लंबी करने के क्या फायदे? अब सांस लंबी करना क्यों जरूरी है ये हम देखते हैं. तो हम जब थक जाते हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जल्दी से थक जाते हैं तो बहुत जल्दी हांफने लगते हैं. हांफने का क्या मतलब होता है? तेज तेज सांस लेना. ये बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है. और योगा यानी कि प्राणायाम करने से क्या होता है? हमारी जो स्टेमिना होती है, हमारे काम करने की जो स्टेमिना होती है, स्टेमिना को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टेमिना को बोलते हैं दम. ठीक है, दम खम. जो हमारा दम होता है वो और बढ़ता है. आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा इज द राइट वर्ड, आपकी जो ऊर्जा है, आपके शरीर की ऊर्जा है वो
बढ़ती है जब हम प्राणायाम करते हैं, हमारी सांस लेने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है, ठीक है। रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब जो आप तेज तेज सांसें लेते हो वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस मतलब कम होना, ठीक है। रिड्यूस्ड प्राणायाम करने से हमारी जो सांस लेने की जो होती है ना, वो सांस हम लंबी सांसें ले सकते हैं रेदर देन छोटी छोटी तेज तेज सांसें लेना। जब हम थक जाते हैं तो छोटी छोटी सांसें लेते हैं और तेज तेज लेते हैं, बट योगा करने से हम वही सांसें धीरी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस ब्रीथिंग रेट के क्या फायदे हैं? रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स यानी के फायदे। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, दिल क्या करता है, दिल आपके पूरे शरीर में खून भेजता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, दिल पे जोर कम पड़ता है। जब हमारी सांसें स्टेबल होती हैं, जब हम सही तरीके से सांसें ले रहे होते हैं, तो हमारे दिल पर जोर कम पड़ता है। उस वजह से जो हार्ट रेट होती है वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर देती है, ठीक है। वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखकर चलती है, बढ़ाती नहीं है या बहुत कम नहीं करती है, साथ नॉर्मल लेकर चलती है। और हमारी जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, वो बिल्कुल आरामदेह हो जाता है, ठीक है। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट एंड रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी कि हमारे और जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है आप कितने समय तक जी सकते हो, उसका जो उम्र है, आपकी उम्र बढ़ जाती है, ठीक है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। तो प्राणायाम हमेशा हमें खाली पेट करना चाहिए, एम्प्टी मतलब खाली होता है ना, तो एम्प्टी स्टमक, एंड प्रेफरेबली मतलब होता है कि प्रेफरेबल यानी कि आपको, मतलब आप कभी भी कर सकते हो, बट सही यही रहेगा कि आप मॉर्निंग में करो। जब हमें कोई चीज प्रेफर करनी होती है, यानी कि दो में से कोई एक चीज चुननी होती है, तो हम क्या कहते हैं, प्रेफर करते हैं, यानी कि उस एक चीज को ज्यादा की ज्यादा शेयर देते हैं, ठीक है। तो प्रेफर हमें प्राणायाम जो होता है खाली पेट करना चाहिए और ज्यादातर सुबह करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। तो आप रात में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो, पर देयर शुड बी अ गैप, मतलब आपके खाने के, आपके जो लास्ट मील है यानी कि डिनर, रात के खाने के 4 घंटे बाद आप प्राणायाम कर सकते हो, जब आपका खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है 4 घंटे बाद, तब आप रात में भी प्राणायाम कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। तो जो शिवम और नितिन होते हैं वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं योगा करने में, और उस योगा टीचर से परमिशन लेते हैं, यानी कि आज्ञा लेते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने की, ठीक है, जिस ग्रुप में सब लोग योगा कर रहे होते हैं। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। तो जो टीचर है अब कुछ प्राणायाम के विधि बताएगा आपको, ठीक है। तो पहला प्राणायाम कौन सा है? पहला प्राणायाम है बद्ध पद्मा आसन, बद्ध पद्मा आसन, ठीक है, बद्ध पद्मा आसन। तो स्टेप्स के साथ साथ पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो पहला स्टेप 1 है, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। तो पिक्चर में आप देखो कि जो लड़का है वो आराम से बैठा हुआ है पालती लगाकर एक चटाई के ऊपर, और अब उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। स्टेप 2 इज पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। तो लेफ्ट यानी कि होता है आपका बाया एंकल, एंकल यानी कि आपकी एड़ी, अपना एक पैर, अपना जो एक एड़ी है, एक एड़ी को अपने दूसरे वाले पैर के थाई पे आपको रखना है। थाई मतलब यानी कि जांग, ठीक है। तो आपको अपना एक एड़ी दूसरे वाले पैर यानी कि दूसरा पैर जो है आपका उसके थाई पे रखना है। स्टेप 3 इज नाउ पुट राइट एंगल ऑन द लेफ्ट थाई, ठीक है। अब जो दूसरा पैर बचा आपका यानी कि राइट एंकल, वो लेफ्ट थाई पे रखना है, ठीक है। जो दूसरा वाला एंकल बचा उसको दूसरे वाले पैर पे रखना है। आपको पिक्चर देख के समझ आ गया होगा कि एक पैर दूसरे पैर पे और दूसरा पैर पहले वाले पैर पे, ठीक है। और इस पोस्चर को क्या कहते हैं, पोस्चर यानी कि पोज, पोज का सिनोनिम भी होता है पोस्चर। तो इस पोस्चर को क्या कहते हैं? इस पोस्चर को कहते हैं पद्मासन। मैंने आपको अभी बताया था पद्मासन, ठीक है? पद्मासन, पोस्चर मतलब होता है आसन, ठीक है? और इस वाले पोस्चर को हम क्या कहते हैं? पद्मासन, ठीक है? नहीं तो इसको हम बोलते हैं बधी पद्मासन भी, ठीक है? बधी पद्मासन भी बोलते हैं इसको। अब आपको अगला आसन है वो सिखाएंगे। अगला आसन है अनिलोम विलोम, ठीक है? अनिलोम विलोम, इसको अनिलोम विलोम भी कहते हैं, ठीक है? ये जो आसन आपको दे रखा है पर इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको जो नाम दिया हुआ है वही बोलेंगे। तो देखते हैं क्या है। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट डिफिकल्टी टू सिट इन दिस पोज, डोंट वरी, विद लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। तो जो पद्मासन है इसको करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप सीख जाओगे। स्टेप फोर, अब अगला आसन देखते हैं। प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। तो आपको एक लंबी सांस लेनी है सबसे पहले, और अपना एक जो अंगूठा है राइट हैंड का अंगूठा आपको अपने लेफ्ट हैंड के नाक पर रखना है, ठीक है? और एक साइड से फिर से सांस लेनी है, ठीक है? अगर आप राइट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि नाक बंद करोगे तो आपको उस नाक से सांस नहीं आएगी और आपको थोड़ा घुटन सा महसूस होगा, पर आप ऐसा करो और तब तक करो जब तक आपकी लंग्स यानी कि आप पूरी सांस नहीं लेते हो। फिर 5 से 10 सेकेंड रुकिए, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबल। तो तब तक रुकिए जब तक आप कंफर्टेबल हैं, नहीं तो 5 से 10 सेकेंड रुकिए। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। तो कुंभक बोलते हैं जो सांस रोकने की क्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं? कुंभक, ठीक है? तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, उस इंसान ने अपने एक अंगूठे से दूसरे वाले नाक के साइड में बंद कर रखा, एक साइड से सांस ले रहा है और फिर वो रुका हुआ 5 से 10 सेकेंड है। अब आगे क्या करता है वो? नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर राइट विद योर रिंग फिंगर, देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। अंगूठे की बजाय जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसको दूसरे नाक के साइड में रखना है आपको, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, लेफ्ट नोज पे रखना है और फिर से राइट साइड से सांस लेनी है। जो आपने पहले लेफ्ट नोज से सांस ली थी वो आपको छोड़ देनी है। अब आपको अपना जो थंब है वो रिलीज करना है, उसके बाद अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि लेफ्ट वाले साइड नाक को बंद करना है और अब राइट साइड से हवा लेनी है। और द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। तो सांस होल्ड करने को बोलते हैं कुंभक, सांस लेने को बोलते हैं पूरक और सांस छोड़ने को बोलते हैं रेचक। टैप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब मैंने आपको बोला कि जैसे आपने लेफ्ट साइड से सांस ली थी, अब राइट साइड से सांस लेनी है और फिर से अपनी ब्रेथ जो है वो होल्ड करनी है। होल्ड योर ब्रेथ अगेन, नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और ये जो क्रिया है ये आपको दोबारा करनी है, ठीक है? दोबारा अपना जो राइट नॉस्ट्रिल है थंब से वो आपको दोबारा दबाना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देनी है। You may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds. तो initially यानी कि starting में आपको ये 5 बार करना है, पर धीरे धीरे आप ये 15 से 20 बार कर सकते हो एक बार में। तो ये अगर आपको थोड़ा confusing लगे जो मैंने आपको बताया है, आप pictures follow कर सकते हो। एक इंसान की pictures दे हुए हैं, ये आप follow कर सकते हो कैसे वो सांसें ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्नड प्राणायाम, दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड योगा क्लास डेली। तो शिवम और जो नितिन होते हैं वो बहुत खुश होते हैं प्राणायाम सीख के, और वो थैंक यू बोलते हैं योगा टीचर को और डिसाइड करते हैं यानी कि निश्चय करते हैं कि वो पार्क में रोज आएंगे और योगा क्लास को अटेंड करेंगे रोजाना। और यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम ग्लॉसरी देखते हैं। पहला वर्ड है प्लेजेंट। प्लेजेंट ये यानी कि सुहावना, है ना? खुशहाल, खुशहाल मौसम, मैंने आपको बताया ना, खुशहाल, इंजॉयबल, प्लीजिंग। सेकेंड इज ट्रैक। यानी कि दौड़ने की जगह, मैंने आपको बताया था चलने की जगह और दौड़ने की जगह दोनों। ट्रैक, पार्क क्या होता है, गार्डन होते हैं, पर गार्डन में बीच बीच में चलने की जगह नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक, अ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स। यूजुअली क्या होता है, पार्क गोल गोल तरीके से होता है, जो पार्क होता है वो गोल होता है, और साइड साइड में फुटपाथ जैसे बोलते हैं ना जिसको, उसको बोलते हैं ट्रैक। पोज यानी कि मुद्रा, द पोजिशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स, कोई ऐसी पोजिशन जिसमें कोई खड़ा होता है डिफरेंट तरीके से, ठीक है, फेक तरीके से, जैसे हम नॉर्मली खड़े हैं, फिर हम जब फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं हम खुश हो जाते हैं, अपना हाथ जो है वो कमर पे रख लेते हैं, इसको बोलते हैं पोज, मुद्रा देना। वंडर, टू आस्क योर सेल्फ और एक्सप्रेस अ विश टू नो अबाउट समथिंग, यानी कि जानने की उत्सुकता होना, ठीक है, उत्सुकता होना या सोचना आपकी कोई विश हो उसको एक्सप्रेस करना, नहीं तो उत्सुकता से किसी से सवाल पूछना, इसको क्या बोलते हैं, वंडर। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, किसी चीज के बारे में जानना, टू डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी कि कोई किसी चीज का बढ़ावा होना, ठीक है, किसी चीज को बढ़ाना, विस्तार करना किसी चीज का, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग, किसी चीज को किसी चीज में मिलाना, ऐड करना, यानी कि ऐड करने से क्या होता है, कोई चीज बड़ी होती है ना, तो सिमिलरली एक्सटेंशन मतलब बड़ा करना। रिड्यूस यानी कि कम करना, टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज क्वांटिटी प्राइस और एसेट्रा, किसी चीज का साइज को कम करना या किसी की क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी होती है ना, यानी कि चीज, प्रॉपर चीज को कम करना या पैसा कम करना, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस करना, रिड्यूस वर्ड। प्रेफरेबली यानी प्राथमिकता देना, ठीक है, प्राथमिकता, पहली ऑप्शन देना, इन अ वे दैट इज मोर अट्रैक्टिव और मोर सूटेबल, जैसे आपको कोई चीज, सपोज आपको केला और मैंगो दोनों पसंद है, पर आपको मैंगो ज्यादा पसंद है, राइट, तो आप मैंगो को क्या दोगे, प्रेफर करोगे, आप मैंगो को प्रेफर करोगे, प्राथमिकता दोगे। सिमिलरली प्रेफरेबली का मतलब आप इस तरीके समझिए कि अगर दो चीजों में चॉइस है और आपको एक चीज चुननी है जो आपको ज्यादा पसंद है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। सी यानी कि मांगना, टू आस्क एडवाइस हेल्प अप्रूवल एंड परमिशन, तो किसी से एडवाइस मांगना, मदद मांगना, आज्ञा मांगना, ठीक है। कामली यानी कि शांतिपूर्वक, इन अ वे दैट शोज यू आर नॉट एक्साइटेड नर्वस और अपसेट, एक तरीके से शांत रहना, ठीक है, काम रहना, शांत। स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा, अ लिटिल। कंफर्टेबल यानी कि आराम से कोई चीज करना, आराम देना, इन अ कंफर्टेबल वे, इजी रहना, ठीक है, इजीली। अब हम एक्टिविटीज पर आते हैं, एक्टिविटी वन, तो आपको एक पिक्चर दे रखी है, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। तो पहला है जो आपको दिख रहा है ना, पोज दिया हुआ इंसान बैठा हुआ है ना पालती मार के, ये क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेज है, ये क्या है, स्टेप वन, जिसमें कहा गया है सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। दूसरा क्या होगा, अब दूसरा होगा कि ये जो इसके साइड में जो पिक्चर है, यानी कि 1 2 3 4th, फोर्थ पिक्चर जो है आपकी, ये हो जाएगी पहली, फिर दूसरी पिक्चर, ठीक है, जैसे जो उसमें क्या करा हुआ है, उस इंसान ने अपना जो अंगूठा है उससे बंद कर रखा है एक नाक को, ठीक है, तो ये हो जाएगी दूसरी पिक्चर। तीसरी पिक्चर हो जाएगी पहली और दूसरी वाली, जिसमें एरो नहीं बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है ना सांस लेने वाला, जैसे एक नाक से तो उसने अपनी नाक बंद कर रखी और दूसरी नाक से वो सांस ले रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगी तीसरी पिक्चर। जो दूसरी पिक्चर है फ्रेम में, वो हमारा तीसरा ऑप्शन है। फिर चौथी क्या हो जाएगी, चौथी हो जाएगी पांचवी वाली पिक्चर, जिसमें जो रिंग फिंगर है वो उसने दूसरे वाले साइड में रखी हुई है, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी चौथी पिक्चर, जो रिंग फिंगर है वो राइट हैंड साइड में उसने रखी हुई है, और जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्या है, वो हमारी आखिरी है, वो फिफ्थ है, ठीक है, वो हमारी फिफ्थ पिक्चर है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ फिर से, 5 3 1 2 4। अगला है मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। तो कुंभक क्या होता है? कुंभक होता है द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। ठीक है, सांस रोकने को कुंभक बोलते हैं। तो किस किस पिक्चर में उसने सांस रोकी हुई है? उसने सांस रोकी हुई है आखिरी पिक्चर में, तीसरी पिक्चर में उसने सांस रोकी हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी, कुंभक का सही जवाब है तीसरी पिक्चर। रेचक, रेचक का क्या मतलब होता है? रेचक का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। जिस पिक्चर में जो एरो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि सांस छोड़ने वाली जो पिक्चर है वो है रेचक। तो पहली पिक्चर जो है जिसमें एरो नीचे की तरफ है वो है रेचक। तो पूरक क्या होता है फिर? पूरक होता है सांस को लेना। ठीक है, सांस लेना। तो जिसमें एरो जो अंदर की तरफ है, नाक की तरफ जो एरो दिया हुआ है, जो सेकंड पिक्चर है, जो बची हुई पिक्चर है, वो हो जाएगी पूरक। ओके, तो अब हम ये जो चैप्टर है यही एंड करते हैं। अगले ऑडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। आप अपने घर में प्राणायाम स्टार्ट करिए, और प्राणायाम करके आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि प्राणायाम से हम अपनी सांस लेने की जो क्रिया है वो बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही ये ऑडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।